मित्रों नमस्कार। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की लगाई रोक का अधिवक्ता, सोशल एक्टिविस्ट और कानून के जानकार कर रहे स्वागत। लोकसभा चुनाव के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अधिवक्ता, सोशल एक्टिविस्ट और कानून के जानकार स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि विदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए इस पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बॉन्ड खरीदने वालों की सूची सार्वजनिक करना होगी। आपको बता दें कि इससे लेकर किस तरह की शर्तें थीं और किस तरह की योजना थी। योजना को सरकार ने 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था। इसके अनुसार चुनावी बॉन्ड को भारत का कोई भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई खरीद सकती है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से इस चुनावी बॉन्ड को खरीद सकता था। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के अंतर्गत पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र थे। शर्त बस यह थी कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल हुए हों। चुनावी बॉन्ड को किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता था। बॉन्ड खरीदने के पखवाड़े भर के भीतर संबंधित पार्टी को उसे अपने राजनीतिक बैंक खाते में जमा करने की अनिवार्यता थी। अगर पार्टी इसमें विफल रहती है तो बॉन्ड निरर्थक और निष्प्रभावी यानी रद्द माने जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली है यह कि इसकी योजना 2018 में शुरू हुई थी। इसके पीछे मकसद सिर्फ यह था कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, साफ सुथरा धन आएगा और उसमें व्यक्ति, कारपोरेट या संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दे सकती थी। राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल कर सकते थे। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था। यह शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु में थी। इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों जारी हुए थे इसको लेकर भी आप सबको बता दें कि चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार का यह कदम था। 2 जनवरी 2018 को तत्कालीन मोदी सरकार ने इस बॉन्ड स्कीम को अधिसूचित किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत लाए गए थे। यह बॉन्ड साल भर में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते थे। इसके लिए ग्राहक बैंक की शाखा में जाकर या उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन भी खरीद सकते थे। इसकी खूबी यह थी कि कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपा सकता था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए मूल्य तक के यह बॉन्ड खरीद कर वह अपनी पसंद के राजनीतिक दल को दे सकता था। यह व्यवस्था दानकर्ताओं की या बॉन्ड देने वालों की पहचान नहीं खोलती थी और इससे टैक्स में छूट भी थी। आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल इस तरीके से अपना चंदा इकट्ठा कर सकते थे। सवाल यह थी कि इस तरह की फंडिंग में पारदर्शिता आई, इसे लेकर कई लोगों का अलग अलग मत था। केंद्र सरकार का दावा था कि इस बॉन्ड की शुरुआत से राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, साफ सुथरा धन आएगा। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में लिखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है। इसके जरिए यह था कि कोई भी व्यक्ति या लोगों का समूह बॉन्ड जारी करने वाले महीने के 10 दिनों के भीतर SBI की शाखा से यह चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। जारी होने की तिथि के 15 दिनों की वैधता वाले बॉन्ड 1,000 से लेकर 10 लाख रुपए, यहां तक 1 करोड़ रुपए तक में जारी किए जाते थे। ये नकद जरूर नहीं